शांति बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। हीना बहन, सचिन भाई, सबका थैंक्स कि मुझे अपने घर में और अपने परिवार के सामने ये सुंदर बातें शेयर करने का मौका मिला। तो आज का जो शीर्षक है वो है रूहानी खुमारी। आप सबने पहले भी इसको सुना होगा और अभी गीत में भी हम यही सुन रहे थे। अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति या आत्मा अगर आध्यात्मिक पथ पर है तो रूहानी खुमारी या स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन ये उस आत्मा की या व्यक्ति की जैसे ऑक्सीजन है। उसके बिना उसका उस आध्यात्मिक पथ पर उन्नति को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं हम सब ने रूहानी खुमारी को कभी ना कभी अनुभव तो किया ही है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि रूहानी खुमारी जो शब्द है इसके और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, मतलब कि समानार्थ शब्द क्या हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? अगर इंग्लिश में कहें तो हम इसको कहेंगे स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, रूहानी नशा, ये भी एक शब्द है जी। स्पिरिचुअल हैंगओवर भी कह सकते हैं जो उसके बाद की स्टेज आती है इंटॉक्सिकेशन के बाद की। उमंग उत्साह जो उसका एक सब कंटेंट है। रूहानी मस्ती बहुत अच्छा समानार्थ शब्द है। उल्लास में रहना, ये उसके सिम्टम्स एंड साइंस है जिसमें हम आगे अभी सीखने वाले हैं। तो रूहानी खुमारी जो स्टेज है, जो स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन है, उससे पहले की एक स्टेज होती है। जैसे लौकिक में भी कहें, कुछ लोगों को कहते हैं ना उनको एडिक्शंस होते हैं। एडिक्शंस को हम हिंदी में कहते हैं व्यसन होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अल्कोहल लेने की आदत होती है तो पहले उसकी आदत होती है, फिर वो एडिक्शन में कन्वर्ट होता है और फिर और ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर होती है इंटॉक्सिकेशन की स्टेज। और एक और शब्द है हाइपरटॉक्सिसिटी। अगर मेडिसिन में कहें तो बहुत सारी विटामिन्स हैं जिनकी हाइपरटॉक्सिसिटी होती है। तो इंटॉक्सिकेशन माना कि वो जो भी चीज़, जो भी नशे में वो आत्मा है उसके प्रभाव में उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा अनुभव कर रही है। अब लौकिक में कौन कौन से नशे हम जानते हैं उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। हम अपने टॉपिक में रहेंगे स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। आप सभी को क्या लगता है, कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार का नशा, चाहे लौकिक में या रूहानी खुमारी स्पिरिचुअल लेवल पे, किसी नशे को लेने के लिए कोई आत्मा में चाहत क्यों होती है, जरूरत ही क्यों है? प्लेजर फील होता है और रिलैक्स महसूस करते हैं, और क्या कारण है? पहले क्या था, जो भी परेशानी है उससे ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, दुखों को भूल जाते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और स्पिरिचुअल लेवल पे स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन क्यों फील करते हैं, उसकी क्या जरूरत है? तो हमारा जो ओरिजिनल नेचर है उसको हम वापस से उसको फील करने की कोशिश करते हैं। अगर कहा जाए तो जितने भी हम सब लोग हैं, आत्मा है पूरे विश्व में, एक फीलिंग है जो हर आत्मा को चाहिए, एवरीवन, उससे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, वो है प्रेम की फीलिंग। प्रेम की जो फीलिंग है ये भी एक कारण है, बहुत अंडरलाइन बेस है जिससे भी हम किसी नशे की तरफ चले जाते हैं। और एक है हमारी बहुत सारी सटल इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती, तो ये भी एक कारण होता है। फिर कुछ पीयर प्रेशर भी होता है ना, हमारी संगति ऐसी होती है जो हमें उस नशे की तरफ ले जाती है। तो हम जब रूहानी खुमारी को अनुभव करते हैं तो इसमें संगति का क्या रोल है? आप सभी यहाँ पर कैसे आए? किसी बहुत लोगों के कारण होंगे, संगति के कारण, कि कोई आत्माएं स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन को अनुभव कर रही हैं, आपने उनको देखा, आपको लगा कि ये तो कुछ अलग ही उमंग उत्साह में है, फिर उनके पीयर प्रेशर से आपको यहाँ का इंट्रोडक्शन मिला। तो हम जो हमारी ये जर्नी है इसमें आगे बढ़ते हैं, तो स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में सबसे पहले हमें 7 डेज का एडिक्शन मिला, 7 दिन का कोर्स मिला, उसमें हम सबको नशा चढ़ा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन की स्टेज पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स और साइंस हैं जिससे पता चले कि ये आत्मा या हम रूहानी खुमारी को अनुभव कर रहे हैं। लौकिक से अगर देखा जाए, किसी ने अगर कुछ भी लिया हो तो सामने से हम देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को अभी किस चीज का नशा है। सिर्फ यही नहीं देख सकते कि नशा है, हम वो सब्सटेंस भी बता सकते हैं कि अल्कोहल लिया है या कोई दूसरी चीज लिया है। तो कुछ सिम्टम्स एंड साइंस हैं, तो स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन के कौन से सिम्टम्स और साइंस हैं? उसमें सबसे पहली जो चीज आती है चेहरा। तो चेहरे से क्या दिखेगा जो हमें पता चले कि ये आत्मा अभी आध्यात्मिक उस अनुभव को प्राप्त कर रही है, उस खुमारी में है, उस रूहानी मस्ती में है? चेहरे से प्रसन्नता दिखेगी, रूहानियत दिखेगी, और खुशी, हल्कापन, झलक, परमात्म प्यार की झलक जो उसने पाया, उसकी झलक, अतीन्द्रिय सुख चेहरे से दिखेगा। लेकिन रूहानी खुमारी तो बहुत हाईएस्ट स्टेज है ना, एक है आध्यात्मिक लेवल पे है, लेकिन दिस इज द स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की स्टेज है। उस टाइम पे चेहरे से क्या दिखेगा? न्यारा और प्यारा चेहरा, बेफिक्री, वो दूसरों को इंस्पायर करेंगे। लौकिक में आप सबने स्वामी विवेकानंद का चेहरा देखा है, फोटो देखी ना सबने, उनके चेहरे से क्या दिखता है? वो तो फोटो है, लाइव फेस नहीं है, लाइव फेस में तो और एक्सपीरियंस होगा, उपराम अवस्था दिखती है और पवित्रता, पवित्रता बहुत स्ट्रांगली चेहरे से झलकती है। और जैसे जैसे आत्मा रूहानी खुमारी को एक्सपीरियंस करती है, जो चेहरा है वो हमारे शरीर का स्थूल पार्ट है, तो या तो वो आत्मा मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, लेकिन जैसे ही आत्मा ऊपर उठती है, ये मेल और फीमेल का जेंडर बायस भी चेहरे पे नहीं आता, स्पेशली हम स्वामी विवेकानंद के चेहरे से देख सकते हैं। और जो चेहरा है, उम्र भले ज्यादा है शरीर की, लेकिन इनोसेंसी बढ़ जाती है, चेहरा बहुत इनोसेंट दिखता है और मेल फीमेल का पता नहीं चलता। बेस्ट एग्जाम्पल है देवी देवताएं, जो हमारी मूर्तियां हैं, चेहरे हैं, उसमें दोनों के चेहरे बिल्कुल समान होते हैं। ऊपर का वो डिफरेंट है तो बता सकते हैं कि ये लक्ष्मी है, ये नारायण है, लेकिन जेंडर बायस नहीं होता है, इनोसेंसी। और चेहरे में एक और चीज आएगी जो उसी का पार्ट है, आंखें। तो आंखें कैसे बताएंगे? वैराग्य, बेहद की वैराग्य वृत्ति और एकाग्रता और जो चमक और जो उपराम अवस्था थी कि वो आंखें ही और आत्माओं को उड़ा सकती हैं। आंखों में नूर, रूहानी नूर दिखेगा। जो चीजें इग्नोर करनी चाहिए ना, वो नेचुरली ऑटोमेटिकली इग्नोर होगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है आंखों का? अभी हमारे ब्राह्मण परिवार में बाप दादा, जब हम बाबा से मिलते हैं, इसीलिए दृष्टि देने का और दृष्टि लेने का कल्चर भी तो ब्राह्मण परिवार में है। और लौकिक में भी जिन जिन आत्माओं ने साकार ब्रह्मा से मिले, सबका एक्सपीरियंस क्या था कि जैसे ही हम बाबा के सामने आए और हमने दृष्टि ली और हम जैसे कि उड़ गए, हमें देह का भान खत्म हो गया। अपने सारे क्वेश्चन जो पूछने आए थे वो भी भूल गए। तो ऐसे ही तो साकार बाबा से मिले। लेकिन अब जब हम बाबा से मिलते हैं, दृष्टि लेते हैं, और दृष्टि लेने का मतलब ये सामने जाने की बात नहीं है, दूर से भी जब बाबा से मिलते हैं तो हमारी अव्यक्त जो स्थिति है वो बहुत ऊपर हो जाती है। तो फेस और आईज, ये दो चीजें हैं जो सिम्टम्स एंड साइंस दिखाएंगे रूहानी सुखुमारी के, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। उसके बाद क्या आएगा? वॉक। उस आत्मा की चाल कैसी होगी? अगर किसी ने लौकिक में अल्कोहल लिया तो कैसी चाल होती है? मस्त चाल। कौन संभालता है? दूसरे ही संभालते हैं। बिल्कुल इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में तो दूसरे ही संभालते हैं, अपने आप घर भी वापस नहीं जा पाते, लेकिन इस स्टेज में फरिश्तों की चाल कैसी होती है? फरिश्तों की चाल कोई चल के दिखा सकता है? फरिश्तों की चाल कैसी है? अपनी मस्ती में चलेंगे, एक नॉर्मल चाल, कैजुअल चाल, जैसे हम नॉर्मली रोज चलते हैं। और अगर हम रूहानी खुमारी हैं, में हैं, बाबा के प्यार को बहुत अनुभव कर रहे हैं, उस वक्त हमारी चाल कैसी होगी? स्लो मोशन एंड कोऑर्डिनेटेड स्टेप, आवाज नहीं आती है। हम इसमें बेस्ट एग्जांपल कौन सा हम दे सकते हैं? जो हमने मम्मा, यस दादी जी, हमने कौन सी कहानी सुनी है मम्मा की? चलते समय आवाज नहीं होते थे, और जब मम्मा क्लास में आते थे तो कब पीछे से आके बैठ जाते थे पता भी नहीं चलता था। अगर हम ऐसा चलना चलेंगे तो हमें तो दबे पांव चलना पड़ेगा, तब हम ऐसा कर पाएंगे। तो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मम्मा का और दादियों का। तो जो आत्माएं रूहानी मस्ती में होती हैं, उनकी चाल भी बता सकती है। ऐसे बहुत बार क्लासेस में भी कहा है कि हम ब्राह्मण आत्माओं को भी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी चाल की, कि कैजुअलनेस नहीं होती, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी कभी देखते हैं सीढ़ियों से आ रहे हो तो तेज स्टेप्स करके आ रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। तो नॉर्मल स्टेज में भी, पूरे दिन रूटीन में भी हमें अपनी चाल का ध्यान रखना चाहिए कि देवताएं कैसे चलते होंगे। वॉक के बाद क्या आएगा? टॉक। जो आत्माएं स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड हैं, उनके बोल कैसे होंगे? शॉर्ट एंड स्वीट, दूसरों को खुशी देने वाले बोल होंगे, वरदानी बोल होंगे, हर बोल उनका महावाक्य होगा, मरहम, हीलिंग वर्ड्स होंगे। बाबा ने क्या कहा है कि महारथी वो आत्माएं हैं जिनका हर बोल महावाक्य है, हर बोल वरदानी है। मुरली की एक एक लाइन कौन सी होती है? नॉट इवन अ कैजुअल लाइन इन मुरली, एक भी सिंपल लाइन नहीं होती। हर लाइन कैसी होती है मुरली में? एलिवेटेड, महावाक्य, हर आत्माओं को ऊपर उठाने वाली लाइन होती है। वरदानी बोल। तो इससे हम क्या सीखेंगे, हम ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी क्या करती हैं जो अभी हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखा जाए तो हर वक्त तो हम महादानी और महावाक्य तो हमारे मुंह से नहीं निकलते, लेकिन थोड़ा हम ध्यान रख सकते हैं कि हमारी जो बोलने की कैजुअलनेस है स्पेशली, वो हम कम कर लें। जैसे ब्राह्मणों में भी अगर हम रूम शेयर कर रहे हैं, दो भाई दो बहन, रात में जब कैजुअल टॉक होती है उस वक्त तो हमारी कितनी कैजुअल टॉक और लूज टॉक होती है ना, उस वक्त हम ध्यान रख सकते हैं। और स्पेशली इसमें जो आत्माएं लौकिक में अपने ऑफिस में जाती हैं औरों से बात करती हैं, वो तो अपनी ही अवस्था में बात करेंगे, एक नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल में, जो एक इम्प्रेसिव लाइफस्टाइल होता है, इम्प्रेसिव वे ऑफ टॉकिंग। हम आत्माएं स्पेशली अपने लौकिक वर्क प्लेस पे इस बात का ध्यान रख सकते हैं, हम अपनी उसी कौन सी अवस्था में बात करें, एटलीस्ट हम आत्म अभिमानी तो होके उस वक्त बात करें, तो हमारी जो कैजुअलनेस है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। तो एज अ ब्राह्मिन हम अपनी कैजुअलनेस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कैजुअलनेस खत्म कैसे होगी, जब हम सोल कॉन्शियस होंगे, जितना सोल कॉन्शियस होंगे। और वॉक और टॉक के बाद क्या आएगा, वजन, भोजन। भोजन में बताइए क्या आएगा, एक तो भोजन का कंटेंट भी और तरीका भी। तो कंटेंट कैसा होगा, सात्विक भोजन तो हम सब लेते हैं, लेकिन मोस्टली उसमें रॉ फूड्स होंगे, कच्चा भोजन होगा, नेचुरल होगा, अनकुक्ड होगा, जैसा प्रकृति ने बनाया ऐसा ही हम उसको ग्रहण करेंगे। और लेंगे कैसे, बाबा की याद में लेंगे। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो धीरे धीरे हम उसको बढ़ाएंगे ना, अभी जितना हम भोजन ले रहे हैं उसमें अनकुक्ड की रेशियो को, प्रोपोर्शन को बढ़ाएंगे, कुक्ड को कम करेंगे। तो नेक्स्ट सिम्टम साइन क्या है, कंपनी, संगत। कैसी संगत होगी आत्माओं की जो रूहानी खुमारी को अनुभव करते हैं, अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहेंगे। एक साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है कि एक व्यक्ति अगर उसके बहुत सारे लोगों से वो व्यक्ति क्लोज है, लेकिन अगर 1-2-3 में 5 लोगों को ले कि सबसे जो मेरे क्लोजेस्ट 5 व्यक्ति हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी उन 5 व्यक्ति की पर्सनालिटी का एवरेज होती है। मतलब मेरे नजदीक आज की डेट में जो 5 हैं, मेरी पर्सनालिटी उन 5ों की पर्सनालिटी का एवरेज है। तो इसलिए बाबा ने संघ के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन दिलवाई है कि बच्चों आपको अपने संघ का बहुत ध्यान रखना है। हम सब बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमें किसका संघ मिला, ब्राह्मण आत्माओं का मिला। बाबा ने आया अपना बनाया, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या दिया, इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार दिया। और ये जो क्लासेस हैं, सभी आत्माएं इस क्लासेस को अटेंड करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों होती हैं, सब भाग भाग के ये क्लासेस क्यों अटेंड करना चाहती हैं, ये भी संघ का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि सब इस क्लासेस के संघ में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस होती है वो आत्माओं को एलिवेट करती हैं, ऊपर उठाती हैं। तो जो रूहानी खुमारी में आत्मा है उसका संगम देखेंगे तो हमेशा एलिवेटेड आत्माओं का संग होगा। तो अभी इस पे चेक क्या करेंगे, अगर हमारे संग में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनकी रेशो हमें क्लोजनेस से थोड़ा सा दूर करनी है तो हमें कर लेनी चाहिए। हो सकते कुछ आत्माएं ऐसी हों जिससे मैं बहुत क्लोज हूं, लेकिन वो मेरे इस आध्यात्मिक पथ में मुझे बहुत हेल्प नहीं कर रही, तो थोड़ा सा हम डिस्टेंस बना सकते हैं, अपने जो कंपनी है उसको रिवाइज कर सकते हैं। आगे को क्या आएगा और कौन से सिम्टम्स एंड साइंस हैं, फेस, आईज, वॉक, टॉक, फूड, कंपनी, रिलेशनशिप्स और अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमारे फिजिकल साइंस और सिम्टम्स थे, लेकिन मेंटली वो आत्मा क्या फील करती है। जब कोई आत्मा स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड है तो उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उसके अनुभव कैसे होते हैं। वो आत्मा सबसे पहले तो रूहानी प्यार, परमात्म प्यार को अनुभव करती है और हल्का महसूस करती है। और थिंकिंग कैसी होती है, बड़ी दिल होगी, सबको एक्सेप्ट करेगी। अब ये बाहर के एक्शंस हैं, अंदर में फीलिंग्स कौन सी है? अंदर की फीलिंग्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर जो आत्मा करेगी वो बाद में। उसका थॉट पैटर्न कैसा होगा? गुड विशेस होगी, अपनापन अनुभव होगा, उसके विचार कैसे होंगे, थॉट्स कैसी चलेंगी, ऑटोमेटिकली कौन सी थॉट्स चलेंगी, पॉजिटिव माना कि अपने कल्याण की भी चलेगी और औरों के कल्याण की थॉट्स चलेंगी, वेस्ट ऑटोमेटिकली कम होगा। अभी तो हम अटेंशन देते हैं कि मुझे अपने विचारों में परिवर्तन करना है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो मेरे विचार हैं वो पॉजिटिव चलेंगे और हर आत्मा की उन्नति के चलेंगे। दादियों के विचार कैसे होते हैं? कभी नॉर्मल थॉट्स होती नहीं है। हर आत्मा का कल्याण हो ऐसे विचार, और क्लैरिटी कैसी होगी? क्लैरिटी, क्या उस आत्मा को कंफ्यूजन होगी अपने अपने डिसीजंस लेने के लिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है? जो आत्माएं जितना रूहानी कुमारी को अनुभव करेंगी वो उतना ही और लोगों से कम एडवाइस लेंगे, क्योंकि उन्हें खुद ही पता होगा, उतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी डिसीजंस लेंगे लौकिक में या अलौकिक में, तो हमारी क्लियर थिंकिंग होगी। और अपनापन किससे अनुभव होगा? बाबा से बहुत 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 क्लोजनेस, और जितना बाबा से क्लोजनेस उतनी ही ब्राह्मण परिवार से क्लोजनेस। ऐसा कहा जाता है हम अपनापन बाबा के अलावा और किससे अनुभव करते हैं? जितना हमारा ब्राह्मण परिवार है, क्या सबसे इक्वल अपनापन है हमारा? नहीं है। तो उस पे हमें वर्क करना है कि जितने भी लोग हैं सबसे इक्वल अपनापन हो। मैं हमेशा एक चीज का ध्यान रखती हूँ, जब हम अपने वर्क में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारे रिफ्ट होते हैं ना बहुत लोगों के बीच में, उसमें एक ही चीज का टेंशन मेरा रहता है कि जो अपनापन मेरा घर में मेरी माता से है या मेरे भाई बहन से है, उतना ही अपनापन ऑफिस में मेरा मेरे कलीग से हो, तो फिर हमारे कोई रिफ्ट होंगे ही नहीं। लेकिन इस अपनेपन को अनुभव करने के लिए बहुत ही डीप लेवल पे हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। अगला क्या साइन है? जब कोई लौकिक में व्यक्ति ने अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल उसको चलाता है या वो अल्कोहल को चलाता है? हम जिस नशे में हैं, जो कंटेंट है, हम उससे कंट्रोल्ड होते हैं। अगर स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड हैं तो अपने हिसाब से हम नहीं सोचेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे नहीं, अपने हिसाब से बात नहीं करेंगे, लेकिन जिसके इन्फ्लुएंस में है उस हिसाब से हमारी चाल ढाल सोचना होगा। तो हमारी जो मूवमेंट्स हैं, हमारा जो पूरा कंट्रोल है वो किसका है? उस वक्त बाबा का कंट्रोल है। इसलिए बाबा ने हमेशा क्या कहा है? अब देखो, कौन सी चीजें हम खुद करते हैं? हम सोचते खुद हैं, थॉट लेवल पे आया, हम निर्णय बुद्धि से खुद लेते हैं, फिर हम कर्म भी खुद करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस में करते हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड होंगे तो बाबा ने कहा है, अगर आप मेरी श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करूंगा। मतलब हम पूरे के पूरे किससे कंट्रोल्ड हैं? बाबा से। इवन एट द थॉट लेवल, ये बहुत सटल चीज है कि हमारे जो विचार है, हमारे जो बुद्धि का निर्णय है, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? बाबा कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम पूरे के पूरे, जो लास्ट इसमें पॉइंट आएगा वो है कंट्रोल, हम पूरे के पूरे बाबा, बाबा की श्रीमत और परमात्म प्यार से कंट्रोल्ड हैं। ये इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, इतना विस्तार है, बाहर के लोग जब यहां आते हैं सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, जैसे डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, सब एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, कौन सी? यस यस, यहाँ पे सब कुछ जो चलता है, जो ये सेवा का विस्तार है, यहाँ पे कोई भी किसी को खड़ा होके डायरेक्शंस देता हुआ नहीं दिखता। बाहर के लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, कोई किसी को आके किसी की ड्यूटीज नहीं समझाता, एवरीथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना क्यों आती है हमारे अंदर? क्योंकि हम सब सिर्फ एक थॉट से चल रहे हैं, वो क्या है? परमात्म प्यार। हम सब एक परिवार के हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम्स एंड साइंस स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन के, रूहानी खुमारी के। अब इसके आगे हम एक चीज कर सकते हैं, जब भी कोई आत्मा आध्यात्मिक पथ पर होती है तो उसकी जर्नी कैसे होती है? तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम अपनी बात करें तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले 7 days कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद हम स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन में आते हैं, मतलब हमारा जो रूहानी नशा है वो बहुत 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 बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। यस, फिर क्या होता है, जब कोई अल्कोहल लेता है, जब रात को पिया तो बहुत नशा है, बेहोशी की स्टेज, फिर वो सो जाएगा, सुबह जब उठेगा तो क्या होता है, फिर उसको हैंगओवर होता है। हैंगओवर माना कि उसका नशा थोड़ा थोड़ा कम हुआ, थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और फिर दोपहर तक आते आते नशा पूरा उतर जाता है। तो जब हम रूहानी खुमारी में हाई लेवल पे हैं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हैंगओवर, मतलब हमारा जो नशा है वो थोड़ा थोड़ा कम होना होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर हम शाम के योग में जाएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें वापस कहाँ कहाँ जाते हैं। एक टाइम पर आता है कि वो नशा पूरा का पूरा खत्म, पूरा वाइपिंग आउट। उसके बाद क्या होगा, अगर किसी ने अल्कोहल लिया और पूरा छोड़ दिया, नशा उतर गया और छोड़े हुए 4 दिन हो गए, उसके बाद क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स, फिर से तलब उठती है कि हमें लेना है। तो अगर किसी बच्चे का बाय चांस परसेंटेज बहुत कम है, नशा पूरा उतर गया, तो एक तो स्टेज आएगी कि उसमें विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, फिर से उस परमात्म प्यार को पाने की इच्छा आएगी, एक स्टेज और आएगी। अगर अल्कोहल लेने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स आए, रिहैबिलिटेशन में आए, ठीक होके घर आए, फिर विड्रॉल सिम्टम्स हैं, लेकिन उस वक्त अल्कोहल नहीं लिया, कुछ और ले लिया, डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं कि फीलिंग वही आएगी लेकिन वो अल्कोहल नहीं है। अगर कोई नए किस्म का नशा मिल गया तो पुराना वाला नशा छूट जाएगा। तो ऐसे ही या तो हमारा जब रूहानी नशा बिल्कुल खत्म होगा, या तो हमें विड्रॉल होगा, या फिर हमें बहुत बहुत कम परसेंटेज है, या फिर उस आत्मा को कोई नई किस्म का नशा हो जाएगा और वो रूहानी मस्ती से बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ये कौन सा नशा है, माया का नशा, जो बहुत थोड़ी आत्माएं बाबा को छोड़ के चली जाती हैं। बाबा मुरली में कौन सी लाइन बोलते हैं उन आत्माओं के लिए, आश्चर्यवत, सुनंती, बहुत सारे हैं। अब हम इस स्टेज में आएंगे, तो अभी सबसे पहले हमें चेक करना है कि हम कहाँ पर हैं। ये तो सबका हो गया, 7 days कोर्स सबका हुआ, हम अभी 7 days कोर्स से और हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन को अनुभव करने के बीच की स्टेज में हैं। कुछ बाबा के बच्चे ऐसे होंगे जो हैंगओवर की स्टेज में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका नशा पूरा उतर गया होगा, परसेंटेज बहुत कम, और कुछ ऐसे होंगे कि बिल्कुल नशा उतरा हुआ है और बिल्कुल जैसे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, अब वो विड्रॉल में है, मतलब अब फिर से उनको परमात्म प्यार को प्राप्त करने की इच्छा है। तो इसके सिम्टम्स एंड साइंस हमने देखे, हैंगओवर और वाइपिंग आउट के सिम्टम्स एंड साइंस क्या हैं, कैसे पता चले मुझे कि मेरा रूहानी नशा धीरे धीरे कम हो रहा है। पूरा खत्म होगा तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इनिशियली कैसे पता चले, अर्ली स्टेज पे। इंटेलिजेंट आत्मा वो है जो शुरू में पहचान ले अपनी बीमारी को, ज्ञान योग का आकर्षण कम हो जाएगा, मुरली से इंटरेस्ट कम, बाहर का आकर्षण बढ़ जाएगा, थकान फील होगी, मन की थकान फील होगी, और बहानाबाजी करेंगे पढ़ाई को पढ़ने के लिए, ब्राह्मण परिवार से दूर हो जाएंगे, परचिंतन होगा। तो जो सिम्टम्स एंड साइंस थे वही बदलेंगे, हमारी कंपनी में कुछ चेंज आएगा, संघ में सबसे पहले चेंज आएगा, ब्राह्मण आत्माओं से दूर होंगे, ऐसी आत्माओं से कम्युनिकेशन कम हो जाएगा जो हमें ऊंचा उठाती थी, लौकिक की हमारी दोस्ती बढ़ती जाएगी जब हमारा रूहानी नशा कम होता जाएगा, और हॉस्पिटल असुरक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असुरक्षा की फीलिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है निश्चय कम हो जाएगा, है ना, सबसे पहला जो अटैक किस पे आएगा, निश्चय पे, बाबा से प्यार और बाबा पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, वो धीरे धीरे कम होगा, पूरा कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, और क्योंकि इसके साइंस अलग हैं हैंगओवर के और वाइपिंग आउट के साइंस अलग हैं, ऑब्वियसली वो ज्यादा होंगे। खाने पीने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वंडरफुल, क्योंकि फूड की बात आई थी ना। हाँ, अंदर से खालीपन महसूस होगा और जो क्लैरिटी थी थिंकिंग की, डिसीजन मेकिंग की, वो क्लैरिटी कम होती जाएगी। फिर क्या होगा, हम हर छोटी छोटी बात पे सबसे एडवाइस लेंगे, ये करना चाहिए नहीं तो ये करना चाहिए, बाबा से प्यार हमें कम अनुभव होगा। ये सारे तरीके हैं। अब लास्ट की स्टेज है, ऐसी वो आत्मा है जिसका किसी कारणवश, वॉलंटरली कहें, कॉन्शियसली कहें, ड्रामानुसार कहें, या पापों का खाता बहुत है, रूहानी नशा बिल्कुल खत्म, और वो आत्मा उस स्टेज पे है कि पूरी, आप लेबल लगा सकेंगे तो कोई भी लेबल लगाए, लेकिन एक कहावत है कि अगर किसी आत्मा ने परमात्म प्यार को अनुभव किया है, एक बार भी अगर कर लिया, तो फिर चाहे वो छूट भी जाए, लेकिन फिर से वापस उस आत्मा में उसी प्यार को अनुभव करने की इच्छा होगी। तो विड्रॉल सिम्टम्स उन आत्माओं के होते हैं कि बाबा भले छूट गया, लेकिन कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद फिर से विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे बाबा को फिर से प्राप्त करने के, फिर से उस प्यार को महसूस करने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस स्टेज पे उस आत्मा को क्या करना चाहिए, वो खुद से नहीं कर सकती, लेकिन अब हम सब यहाँ बैठे हैं तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे वो फिर से ऊपर उठे। उस आत्मा को सबसे पहले अपनी कंपनी ठीक करनी पड़ेगी और फिजिकली वॉलंटरली सेंटर में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि किसी भी कारण से नशा कम है, सेंटर में जाते हैं, इतनी रेस्टलेसनेस है कि 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर का फिजिकल टाइम बढ़ाना पड़ेगा, कंपनी ठीक करनी पड़ेगी, और क्या करेंगे, सेवा में बिजी रहना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, अपने आप को स्थूल सेवा में, छोटी से छोटी सेवा में जिसमें अपना मन बुद्धि लग सके, अपने आप को बिजी करना पड़ेगा, तब हम विड्रॉल से ऊपर आएंगे। इस विड्रॉल से ऊपर स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन में आना मतलब उसको सीपीआर देना, जैसे कोई मरीज मर रहा होता है ना, हम क्या करते हैं, एंड में उसे रिससेट करते हैं, तो ये वही वाली स्टेज है। तो आप कौन कौन से रिसिस्टेशन के उसके रेडीमेड पॉइंट्स देंगे कि वो कंपनी ठीक करे, सेंटर में जाए, सेवा में अपने आप को बिजी करे और अपनी हिम्मत बढ़ाए, मधुबन जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो सूरज भाई भी बोलते हैं कि अगर किसी आत्मा को अपना नशा भी बढ़ाना है या यहां से यहां जाना है, तो बाबा का बनने के बाद उस आत्मा को जो जो प्राप्तियां हुई हैं वो उसको लिखे, सिर्फ मन से याद नहीं करे लेकिन उसको लिखे। तो बाबा से जो मुझे प्राप्तियां हुई हैं उसको मैं दोबारा अपने आप रिमाइंड कराऊंगी, तो फिर मुझे बाबा की इम्पोर्टेंस का अनुभव होगा, तो फिर से मैं विड्रॉल से ऊपर जा सकती हूँ। और अगर यहाँ कोई है तो फिर तो आत्मा को दूसरा ही कोई नशा मिल गया, ऐसी बहुत कम परसेंटेज होती है। फिर कोई ऐसी आपदा आए तो फिर से शायद बाबा का प्यार अनुभव हो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हम या तो यहां है या यहां है, हो सकता है हम इसके बीच में हो, तो ये वाला हमारा मेन टारगेट है कि हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन को एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए हम क्या करें। बिल्कुल 100% तो कोई नहीं है, 100% तक जाने के लिए क्या करना है, चिंतन, शक्तिशाली अमृत वेला, ब्राह्मणों का संघ, और बेसिक लेवल पे, फीलिंग्स लेवल पे, जो बेस है हम सबका क्या आधार है ज्ञान में चलने का, प्योरिटी, तो उसका प्राप्ति हुआ उससे पहले परमात्म प्यार, तो क्या करें ऐसा, तो ऐसा क्या करें कि हम इस परमात्म प्यार को बढ़ाएं, बाबा से जो हमारा इतना प्यार है, उस हाउ टू रिकिंडल दिस लव फॉर बाबा। ऐसे कौन से इंस्टेंट तरीके हैं, इंस्टेंट, जो हेल्प किया उसको याद करें, तो उनकी कथाएं पढ़े। एक गीत मैं रिसेंटली सुन रही थी, समय कम है वरना आपको उसको कुछ लाइंस बताती। वो गीत जब हम सुनते हैं ना तो बाबा से हमारा प्यार बहुत बहुत बढ़ जाता है। और कौन से इंस्टेंट तरीके हैं? मैं एक लाइन बनाती हूँ उसकी, गा के सुनो। मुझे गाना नहीं आता। अच्छा, ये मेरी अर्जी है कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यार का अशकों से होता है। छम 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 बारिश है, माही घर आ जा, हर बूंद सिफारिश है। तू इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा है कि चांद भी कहे तुझसे कि तू चांद हमारा है। जब वो छत पर आए, हर घर की खिड़की हौले से खुल जाए। ये मेरी अर्जी है कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये बहुत लंबा गीत है, मैंने सिर्फ दो लाइन सुनाई है आपको। तो ऐसे गीत सुने या अपने चिंतन से कुछ भी करें, हम परमात्म प्यार को बहुत बहुत बढ़ाएं। ये प्यार हम सब ब्राह्मण आत्माओं की ऑक्सीजन है। और कौन सा तरीका है रूहानी खुमारी को शूट अप करने का? इंस्टेंट, इंस्टेंट मुरली, और उसमें भी कौन सी मुरली? अव्यक्त मुरली। तो अव्यक्त मुरली ऐसा तरीका है जो इंस्टेंटली हमको बहुत बहुत ऊपर उठाती है। बहुत सारी आत्माएं ये भी कहती हैं कि जब सूरज भाई की क्लास सुनते हैं तो हमारा नशा बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्या होता है? उस एक स्पेशल चीज है उस क्लास में, सम्मान। तो सम्मान की जो शक्ति है उससे भी हम उस अपने रूहानी नशे को बढ़ा सकते हैं। और क्या तरीके हैं? ग्रुप में जुड़ना, अपनी कंपनी को ठीक करना, और लास्ट में है वो व्हाट्सएप, थोड़ा सा पीछे का है लास्ट में, उससे डेफिनेटली। अभी तो सब आत्माएं व्हाट्सएप से और इस क्लासेस से ही अपने आप को उन्नति में लेके जा रही हैं। और है बेहद की वैराग्य वृत्ति लास्ट में। जितना त्याग होगा, जितनी तपस्या होगी, उतनी ही बाबा से हमारा प्यार बढ़ेगा। लेकिन त्याग किस चीज का करना है? बाबा ने मुरली में कहा है, बेहद की वैराग्य वृत्ति माना अपने व्यर्थ संकल्पों का त्याग करना। और जब हम स्थूल में टाइम वेस्ट करते हैं, उस टाइम को हम वेस्ट ना करें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम रूहानी खुमारी की बात करते हैं, लेकिन इसके आगे क्या? अब हम इस फ्लो चार्ट को नहीं देखेंगे, यहां से चलेंगे आगे। हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, कभी हैंगओवर नहीं, वाइपिंग आउट नहीं, लेकिन इस हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन के आगे क्या होगा? रूहानी खुमारी से हम आत्माएं रूहानी उन्नति की ओर बढ़ेंगे, हम ऊंचे उठेंगे। और उन्नति से आगे क्या होगा? रूहानी परिवर्तन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा आया है किस लिए? परिवर्तन करने लिए। बाबा आया, बाबा ने इनको ज्ञान दिया और रूहानी नशे को बढ़ाया, तो फिर कॉन्शियसनेस बढ़ी। यहां पर कॉन्शियसनेस बढ़ी तो हम इंडिविजुअल लेवल पे अपनी इंटॉक्सिकेशन बढ़ाते हैं और कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं। फिर क्या होता है, हम सभी एक सोच से चल रहे हैं तो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होती है। और आज तक देखा है जो महान परिवर्तन हुए हैं वो एक सोच से नहीं हुए, बहुत सारे लोगों की सोच से हुए। तो जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जाके फिर क्या करेगी? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। तो बाबा के इस महान कार्य में हम सभी को सहयोगी बनना है। कैसे बनेंगे सहयोगी? अपने पर पूरा अटेंशन रखेंगे और अपनी रूहानी खुमारी के अनुभव को रोज उसका जो ग्राफ है उसका बढ़ाएंगे। तो रूहानी खुमारी से रूहानी उन्नति की ओर और रूहानी खुमारी से रूहानी परिवर्तन की ओर। इसी चिंतन के साथ हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति एंड थैंक यू बाबा।